नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। सबसे पहले मुख्य समाचार। जनजन की सरकार जनजन के द्वार बना उत्तराखंड में सुशासन का प्रभावी मॉडल। आम लोगों की सुविधा के लिए 13 जिलों में 135 शिविरों का किया गया आयोजन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एआई की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और ग्रामीण महिलाओं में उद्यमशीलता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चंपावत में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। और अब समाचार विस्तार से। जनजन की सरकार जनजन के द्वार कार्यक्रम प्रदेश में सुशासन का प्रभावी उदाहरण बन रहा है। इस पहल के तहत सरकार और प्रशासन सीधे जनता तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। राज्य के सभी 13 जिलों में अभी तक 135 शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 74,000 से अधिक नागरिकों से आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 8,000 से ज्यादा आवेदनों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिविरों के माध्यम से 13,000 से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए गए और करीब 47,000 नागरिकों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारी अब दफ्तरों तक सीमित न रहकर सीधे लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, ताकि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि शासन का उद्देश्य केवल आदेश देना नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं को समझकर उनका त्वरित समाधान करना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन ने लोकभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्वदेशी एआई पहल भारत जैन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर राज्यपाल से चर्चा की। बातचीत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामाजिक, तकनीकी और सांस्कृतिक महत्व पर विचार साझा किए गए। राज्यपाल ने कहा कि एआई एक परिवर्तनकारी तकनीक है, जो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि भारत जैन एआई देश को एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि एआई को भारत की सांस्कृतिक धरोहर, ज्ञान परंपरा और जड़ों से जोड़ना आवश्यक है, ताकि भारतीय ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ एक सशक्त स्वरूप मिल सके। प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन ने बताया कि भारत जैन का उद्देश्य हर भारतीय को तकनीक और एआई का केवल उपभोग नहीं बल्कि उसका निर्माता बनाना है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक तथ्यों पर पुलिस ने स्थिति स्पष्ट की है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था डॉ. वी मुरुगेशन ने कहा कि ये गंभीर और संवेदनशील मामला है, जिसमें घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने तत्काल कार्रवाई की थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में एसआईटी की जांच के बाद निचली अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हाल ही में इस प्रकरण से जुड़े कुछ ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है, जिनकी जांच जारी है। अपर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास इस मामले से संबंधित कोई प्रमाणिक जानकारी या साक्ष्य हो तो उन्हें जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराना चाहिए।
अभी जो भी ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया में घूम रही है, उस संबंध में अलग अलग 2 एफआईआर दर्ज हो रखी है, उसे विवेचना जारी है। उस विवेचना के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पे प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई भी सूचना, कोई भी साक्ष्य उपलब्ध थे, वो विवेचना के दौरान एसआईटी के पास उपलब्ध कराया जाना चाहिए था। एक जिम्मेदार नागरिक का दायित्व यही होता है। हाल ही वीडियो जो क्लिप्स घटनाक्रम में संबंध में जो चल रही है, उस संबंध में मुकदमा दर्ज है, जिनकी विधिवत विवेचना की जा रही है। यदि किसी के पास कोई भी सूचनाएं, साक्ष्य उपलब्ध हो, वो उस विवेचना के दौरान उनको साझा कर सकते। सरकार ये भी सुनिश्चित करना चाहती है जांच में कोई भी कमर ना छेड़े और जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर सख्त एवं इफेक्टिव कार्रवाई की जाए।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की बदौलत अब तक 31 क्षेत्रों में 45 करोड़ रुपए की धनराशि वापस दिलाने में सफलता मिली है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि इस पहल के अंतर्गत पिछले 8 महीने में 67,000 से अधिक शिकायतों का निपटान किया गया। मंत्रालय के अनुसार सर्वाधिक 39,000 से अधिक शिकायतें ई कॉमर्स क्षेत्र की थी, जिसमें 32 करोड़ रुपए की राशि वापस कराई गई। मंत्रालय ने बताया कि उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1915 पर फोन कर 17 भाषाओं में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 129वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद कार्यक्रम का प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं में उद्यमशीलता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चंपावत में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तराखंड के पर्यटन एवं ग्राम्य विकास सचिव धीरा सिंह गर्ब्याल ने की। कार्यशाला की शुरुआत में सचिव ने कलेक्ट्रेट परिसर में महिला सहायता समूह और विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय कृषि, बागवानी और अन्य उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने, उनके संवर्धन और बेहतर विपणन पर जोर दिया है।
मुख्य सत्र में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत महिलाओं की उद्यमशीलता और व्यवसायिक क्षमता बढ़ाने पर चर्चा की गई। सचिव ने महिलाओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और कई मामलों में मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया। उन्होंने रूरल सेंटर इंक्यूबेटर को सशक्त करने और लखपति दीदी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। सचिव गर्ब्याल ने कृषि, बागवानी और पर्यटन को जोड़कर क्लस्टर आधारित मॉडल अपनाने, पारंपरिक पहाड़ी शैली में होमस्टे विकसित करने और ट्रैकिंग ट्रेल्स के माध्यम से रोजगार सृजन के निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं को होमस्टे संचालन के लिए प्रशिक्षण देने तथा खेरद्वारी क्षेत्र को ट्राइबल टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए चरणबद्ध योजना तैयार करने पर भी जोर दिया। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से निशी भाटिया।
वहीं राज्य में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत आज देहरादून और उधम सिंह नगर के गदरपुर में एक एक अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। बीते दिन प्रशासन के अनुसार ये कार्रवाई सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया के तहत की गई, जिसमें पहले संबंधित स्थलों पर नोटिस की औपचारिकताएं पूरी की गई थी। सरकार के कार्यकाल में अब तक राज्य भर में 570 अवैध संरचनाओं को हटाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंडी गीत पहली पहली बार का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये गीत सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने और समाज में जागरूकता बढ़ाने का माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री ने लोक कलाकारों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की लोक संस्कृति, भाषा और परम्पराओं के संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पहली पहली बार गीत में राज्य में पहली बार हुए कई प्रमुख विकास कार्यों और सरकार की योजनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में 191 सीएससी में श्रमिकों को देंगे विशेष सेवा, हिंदुस्तान समाचार पत्र इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है, योजनाओं से संबंधित जानकारी, पंजीकरण और अन्य सेवाओं का मिलेगा लाभ, सीएम धामी ने किया इस सेवा का शुभारंभ। मौसम की खबर पर अमर उजाला लिखता है, पहाड़ों में पर हिमपात, उत्तराखंड में कोहरे का अलर्ट, प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। और मसूरी में नए साल पर 3000 वाहनों को ही मिलेगी एंट्री, हिंदुस्तान समाचार पत्र इस शीर्षक के साथ लिखता है, देहरादून और मसूरी में नए साल के यातायात प्लान लागू। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनजन की सरकार जनजन के द्वार बना उत्तराखंड में सुशासन का प्रभावी मॉडल, आम लोगों की सुविधा के लिए 13 जिलों में 135 शिविरों का किया गया आयोजन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एआई की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और ग्रामीण महिलाओं में उद्यमशीलता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चंपावत में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्व 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।